प्रियल अपना काम निपटकर रात के 11:30 बजे टेनिस सेंटर वापस आ गई। इस भागदौड़ ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। थकावट उसके चेहरे पर ही दिख रही थी। रूम में सुधा और आरोही उसका इंतजार कर रही थीं। सुधा ने उसके आते ही कहा, लो आ गई महारानी, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सब कुछ बढ़िया से चल रहा ना? आरोही बोली, तूने भी क्या झंझट पाल रखे हैं यार, जॉब करने के बजाय तुम किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचती क्यों नहीं? ये जॉब वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रियल ने अपना सामान बेड पर रखा और थके हुए चेहरे से कहा, तो कुछ तो करूँ ना अपने गुजारे के लिए। अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो गुजारा कैसे होगा? मैं आसमान से गिरे खजूर में लटकी वाली हालत में हूँ। यहाँ मेरे पास मजबूरी में काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुधा ने पूछा, और निक, उसका क्या होगा? प्रियल बोली, भगवान जाने क्या होगा, मुझे वो काफ़ी नाराज़ लगते हैं। शाम को तो बहाना बनाकर निकल ली थी, पर जब सामने आएंगे पक्का क्लास लगाएंगे। अगर मजबूरी ना होती तो मैं 24 घंटे उसके पास रहती, मगर अब एक मिनट भी देना मुश्किल है। आरोही खड़ी हुई और आईने में खुद को देखने लगी। उसने खुद को देखते हुए कहा, कितना डरती हो तुम यार निक सर से, अगर यही हाल रहेगा तो पूरी लाइफ कैसे बिताओगी तुम इसके साथ? प्रियल बोली, पूरी लाइफ? मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। वो बेड पर लेट गई। अगर वो मुझसे प्यार करते तो अब तक मुझे कह चुके होते, मगर कहना तो दूर की बात, उन्होंने कभी अपने चेहरे पर भी ये बात नहीं दिखाई। अब तक मैं बस उनकी दोस्त ही बन पाई हूँ, मगर आगे कब बढ़ूंगी? हमारा रिश्ता दोस्ती से प्यार में कब बदलेगा ये नहीं पता। आरोही ने कहा, इसके लिए तो उसे प्रपोज करना पड़ेगा। अगर वो प्रपोज कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो करेगा, प्रियल लेटे लेटे बोली। सुधा ने कहा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम करवा देंगे, कहकर वो उसके पास आ गई। अगर वो प्रपोज नहीं करेगा तो हम उसे किडनैप कर लेंगे, फिर उसकी गन ही उसके सर पर रख देंगे और उससे ज़बरदस्ती प्रपोज करवाएंगे। प्रियल हंस पड़ी। सुधा उसे कहकर उसके पास ही लेट गई और उसे हक कर लिया। प्रियल बोली, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर उसने सोने के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं। वो थक चुकी थी और उसे ज़बरदस्त नींद आ रही थी, मगर आंखें बंद करने के बाद उसे निक का चेहरा दिखाई देने लगा। उसे वो पल याद आने लगा जहां उसने निक को गले से लगाया था, लाइब्रेरी के अंदर। फिर वो बाथरूम के दृश्यों को याद करने लगी। वहां वो दोनों गिर गए थे और प्रियल निक के ऊपर थी। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने कहा, ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं होता, और ये कहकर अपने मन में बोली, मैं भी उनके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। मैं उनसे नहीं कहूंगी मुझसे उनसे प्यार है, अगर कहना होगा तो वो कहेंगे। हम दोनों के बीच में अगर प्यार वाला रिश्ता बनना तय है तो इसकी शुरुआत मैं नहीं करूंगी, इसकी शुरुआत वो करेंगे। ये कहकर उसने आँखें कसकर बंद कर लीं और पूरी तरह से सोने पर ध्यान दिया। रॉन के रूम में जिन्नी, एमा और आकाश सब लोग बैठे हुए थे। सबके हाथ में कॉफ़ी थी। रॉन कॉफ़ी का कप नीचे रखते हुए बोला, पता नहीं निक कब बताएगा प्रियल को, टीवी सीरियल के हीरो की तरह ये भी प्रपोज करने में लंबा टाइम लगाएगा। जिन्नी बोली, मुझे भी नहीं बता रहा, लड़के तो प्रपोज के मामले में वैसे भी ढीले होते हैं, वहीं अगर वो मुझे बताने देता तो मैं अब तक दोनों की शादी भी करवा देती। एमा ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और बोली, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं बताएगा, इतने सालों बाद वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा है तो हम उसे पीछे हटने नहीं दे सकते। उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी तो मतलब होगी। आकाश ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी, उससे वैसे दूर नहीं रहा जाएगा, वो पूरा उसका दीवाना हो चुका है। निक वैसे भी एडिक्टेड पर्सन है, अगर उसे किसी इंसान की आदत लग जाए तो वो चाहकर भी नहीं छूटती। रॉन मुस्कुराया, हाँ यही मैं सोच रहा था, वो प्रियल से दूर रह ही नहीं पाएगा, और अब तो उसने हमें भी बता ही दिया वो प्रियल से प्यार करता है। इतना कहने के बाद उसके पीछे हटने के चांस नहीं है, पता नहीं वो कब। जिन्नी सभी के बाद में बोली, कब कब का मुझे नहीं पता, बस वो जल्दी बता दे, प्रियल को ये बात पता चली तो देखना, देखना प्रियल तो पागल ही हो जाएगी। आकाश हंसा और टोंटी मारता हुआ बोला, अब कौन सी सही है, निक को देखते ही वैसे उसके आधे अधूरे ढीले हो जाते हैं। वैसे तो लड़कों की हालत खराब होनी चाहिए, मगर यहाँ उसकी खराब होती है। एमा बोली, ये तो मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है, उसकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के तो क्या कहने, परफॉर्मेंस के मामले में वो हर जगह कचरा कर रही है। टेनिस सेंटर में भी उसके नंबर ठीक नहीं आ रहे, अगर टेनिस सेंटर के एग्जाम क्लियर नहीं हुए तो उसे इंस्टीट्यूट में ही नहीं घुसने दिया जाएगा, फिर तो बंटाधार है। जिन्नी बोली, इसकी फिक्र मत करो, निक पढ़ा देगा उसे, अपने प्यार को यहाँ रखने के लिए वो इतना तो कर सकता है। वो तो इतना कर सकता है, मगर हमारी प्रियल, रॉन ने रिस्पॉन्स देते हुए कहा, वो निक को देखते ही उसमें खो जाती है, वो पढ़ भी लेगी उससे। सब एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगे। हर कोई इस प्रपोजल को लेकर एक्साइटेड था, मगर साथ ही सबके मन में हजारों सवाल भी उमड़ रहे थे, जो अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी को बता रहे थे। इनमें ज्यादातर तो नेगेटिव ही थी। प्रपोजल को लेकर कहीं से भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। निक और प्रियल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, उस पर ढेरों सवालिया निशान थे। निक अपने होटल वाले घर में बालकनी में था और सामने सड़क की तरफ देख रहा था। देर रात को भी नींद उसकी आंखों में नहीं सुहा रही थी। वो सामने की तरफ देखता हुआ मन ही मन बोला, ये प्रियल का नशा किस कदर मुझ पर चढ़ चुका है। मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उससे दूर रहने पर आने वाली फीलिंग मुझे अंदर ही अंदर तड़पा रही है। मेरा एक मिनट निकालना मुश्किल हो रहा है। उसने सोचना बंद किया और अपना हाथ बालकनी की रेलिंग पर पटकते हुए खुद से बोला, निक, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दिखाती तो तू भी कुछ नहीं करना। ये दूर रहने की फीलिंग चाहे कितनी भी दर्द भरी क्यों ना हो, तो इसे सहना है।